कैसा होता है, सुन्न रहने से कैसा हो रहता है, वो सब समझता है। कहाँ तक भरा है, कहाँ तक खाली है, सब देख करके वो कोई झेला उठाया और साध कर ऐसे जगह में मारा जिसे उसमें छेद होकर के टपक लिया। यदि झेला पास में नहीं रहा, रस्सिया लिया, ठुक उसमें छेद कर दिया। छेद का भी माप उसके साथ साथ है। दूध के लिए अधिक छेद करने की जरूरत नहीं। मक्खन जरा गाढ़ा होता है और सूखा हुआ उसके लिए बड़ा छिद्र चाहिए। ताजा मक्खन के लिए उतना जरूरत नहीं है। ठीक माप के अनुसार में वो सब ठीक चुस्त है, सलाद कसूर है, ठीक वैसा ही छेद कर देता है। इस तरह से वो यदि अच्छे बात कर घर के में प्रदीप मत रखो। पति है जैसे प्रदीप तो हमने जलाया है, वो कुकू करके सबको बुझा दिया, खुद अंधकार कर लेता है और अपने अंग की नील कांति से ही उद्भासित कर देता है, सभी हरा सा दिखता है और उसमें प्रवेश कर जाता है वो लेता है। इस तरह से सब उपाय करके उन लोगों ने देख लिया, वो मानता ही नहीं। बंदरों को किस लिए देता है तो क्या बहुत बंदरों का मैं ऋणी, जन्म जन्म का ऋणी, एक जन्म का नहीं। मैं गया वन में अपने छोटे भैया और पिता के साथ में, पिता का हरण कर लिया गया। मैं बीज ला रहा था, मेरे साथ में न सैन्य न रुपया न पैसा न लोकबल न अर्थबल न कुछ। उस समय एक बंदर आगे आया, सुग्रीव हनुमान नामक बंदर ने उसे निताली करा दी और उस समय में गंभीर दुख में उन लोग एक केवल हमारा सहारा बने और उन लोगों ने सारी सेनाएं हमको अर्पित कर दी। उन्हीं लोगों ने पता लगाया पिताजी और हमारे साथ में वही केवल लड़ने के लिए गए। भोजन यदि मांगते और वेतन मांगते तब तो हो चुका था, वेतन तो देना दूर रहा। मैंने भोजन के लिए भी कोई जॉब कहां से करता। वो बेचारे पेड़ के पत्ते, फल, मूल, कंद, उपवास कर करके लंका गए और वहां पर भी अपने लिए हम उसे खाने के लिए नहीं मांगा, सोने के लिए स्थान नहीं मांगा, तंबू और डेरा नहीं मांगा और कितना कष्ट करके हमारे लिए प्राण अर्पित कर दिए। कितने बंदर मर भी गए, वो तो सुसैन बच के आया। उसके सदियों से सब बंदर जीवित हो गए। इंद्र ने वर्षा कर दी अमृत की, भालु कपी जिए किंतु असुर लोग नहीं जिए। क्या है वो चौपाई याद है, किंतु असुर लोग सोए के सोए रह गए। तो इस तरह से मैं उनका ऋणी हूं और जाने के समय विदाई के समय वे भी मैंने उनको कुछ नहीं दिया, केवल किसी किसी को अंक भर लिए और कह दिया कि मैं तुम्हारा हूं। अब इस जन्म में इन बंदरों को खिला करके अपना ऋण हल्का कर। इसलिए हिंदुओं में आज तक काग और बंदर को कभी नहीं मारते थे, किंतु आजकल बंदर और काग को भी मारते हैं। बिलारी को भी नहीं लोग मारते थे। जिन जिन जिनसे भगवान का संबंध है उनको हिंदू जाति नहीं मारती थी, उनको अब तो ठीक सब विपरीत है। उनकी तो बात थोड़ी, जो भक्त लोग हैं जो भगवान का सर्वस्व छोड़ करके भजन करते हैं, जैसे रावण के राज्य में असुर लोग उनको खा जाते थे, ऐसे ही फिर स्थिति होने जा रही है आज या हो रही है। तो राम ये कृष्णचंद्र जी किसी की सब लीला कर रही, गोपियां सुना रही हैं, बड़े रोग से सुनाती हैं कभी कभी। तुम्हारा लड़का भी बचपन की स्थिति में जब इतना भयंकर है, किसी की बात नहीं सुनता, घर जला देने के लिए कहता है, बच्चों को चिमटी काटता है, और ये बड़ा युवा होगा जब इसे शरीर में बल संचार होगा तो न जाने क्या करेगा। अभी तो दो तीन वर्ष में अभी गोकुल की लीला चल रही है, अभी तक की एक की लीला नहीं आई है, गोकुल में साढ़े तीन वर्ष या तीन वर्ष तक,
साढ़े तीन
अभी साढ़े तीन वर्ष में समस्त ब्रज को उठा लिया है, एक साथ में 50-60 हजारों लड़के यदि पहुंच जाए तो एक आदमी क्या करेगा। इस तरह से फैन उत्पात आरंभ हो गया, किंतु सभी चाहते हैं। यशोदा जी किसी को कुछ उपदेश देती हैं, अरे छिपा करके रखो, किसी को कहते हैं घर में सिकल दे दो, उनका तो वहीं तक रह जाता है, कुछ कार करके कभी करती हैं, कभी कहती हैं अरे एक छोटे से बच्चे को थोड़ी सी मक्खन नहीं दे सकती, मक्खन के लिए इतना सिर उठा रखा है और बच्चों को गाली गलौज कर रही है, अरे मेरा बेटा तो तेरा ही बेटा है, बेचारी चली जाती है। यशोदानंद जी ने सोचा इसकी जड़ कहाँ है, उत्पात की जड़ ये है, हमारे घर में जो मक्खन है वो कुछ खट्टा होता है, खट्टा मक्खन सभी खट्टी होती है, दूध एक ही साथ में चार स्त्रियां बैठाए हैं, चारों का टेस्ट एक होगा, एक ही दूध, मान लो कि 10 मनारा एक जगह दूध, और उसको 10 स्त्रियों ने 10 जगह उसको दही बनाने का उपक्रम किया, तो सबके दही में एक समान टेस्ट हो जाएगा, तो क्यों बनाने के ऊपर में नहीं, एक समान नहीं हो, सब्जी 10 ब्रह्मचारियों ने बनाया एक ही समान टेस्ट होगा, अच्छा लगेगा किसी को कोई अच्छा लगेगा, वो जरूर बदल जाएगा, नमक का टेस्ट या किसी चीज का टेस्ट बदल जाएगा, किसी किसी के हाथों में इतना स्वेच्छा रहता है और बारीकी होती है, कोई भी चीज बनाए उसमें टेस्ट आ जाएगा, दही में भी आता है। वो आग की उष्णता और आग की कम उष्णता और समय पर उतारना, समय पर ठीक जाम देना, खट्टी चीज कोई चीज देना, क्या कहते हैं उसको,
जामुन,
जामुन, जामुन देना,
जामुन
जाम से जामुन ये देना ठीक से, समय के अनुसार में सब काम हो तो मीठा से मीठा हो जाएगा जैसा चाहे। आज समय पर यदि कोई नहीं दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जरा गर्म खूब अधिक था उसी में दे दिया तो क्या हो जाएगा,
पानी
पानी छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, पानी से लबालब भर जाएगा, ये सब तरीके होते हैं। उन्होंने सोचा मैं तो इन दोनों बच्चों को लेकर के सब समय व्यस्त रहती हूँ, एक मिनट का फुर्सत नहीं, नदी मंथन कर रही हूँ, पास में बच्चा बैठा है, उनका चित्त कहाँ है, अच्छा लड़का उत्तर के कृष्ण बलराम दोनों दरवाजे की तरफ में भागे, तो यशोदा जी क्या किया, मंथन कर दिया और वो भी भागे, वो ब्रह्मांड घाट की तरफ में गए, उनको पुकारते हुए ब्रह्मांड घाट में जा रही है, एक दिन तो उसे डांट दिया यशोदा जी ने, डांट दिया तो कृष्ण का मन कुछ रुआसा हो गया। तो रुआसे में वहां से बच्चों के साथ में चला गया और कागज की नौका बनाकर जमुना जल में छोड़ दिए, खेल रहे। वो नौका कागज की थोड़ी सी चली गई भीतर और इतने में कृष्ण उसको पकड़ते पकड़ने जाए और इतना पानी में चला गया। और यशोदा जी ने देखा, मैंने इसको कुछ बका इसलिए ये पानी में धसने के लिए जा रहा है डूबने के लिए। अरे बेटा तू चला, अब मैं तुझे कहीं भी कुछ भी कहेगा करेगा तो अपने संकित हो जाती हैं, ऐसा कभी कभी होता है। इस तरह से 2400 घंटा उनका चित्त उसी में लगा हुआ है, कुछ नहीं और बल दिया। सोचा जब गदी तो मैं मंथन नहीं करती, ये दासियों के द्वारा करवाती, दासियां दूध ला करके ले आती। अच्छा दूध लाया गया दो करके, आग जल गई, उसको भट्टी पर गर्म कर दिया और किसी ने किया कंडे की आग पर, दही किसकी अच्छी बनेगी, भट्टी पर बनेगी अच्छी थी, वो नहीं बनेगी, उसमें टेस्ट भी नहीं होगा, उसमें गुण भी नहीं आएगा। तो ठीक है, ये सब ऐसे तैसे कर देती हैं, समय का ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं, ऐसे कर रही है। इसलिए खूब मैं गति जमाऊंगी, गाय भी दूध दूंगी जमाऊंगी भी और मक्खन भी मैं ही निकालूंगी। अब देखेंगे कैसा मीठा नहीं होता है और कुछ नहीं खाता है। इसलिए दीपावली का दिन और सबको उस दिन दीपावली के घर से भेज दिया, अपने अपने घरों में जाओ। रोहिणी और बलदेव को उपानंद जी अपने घर में ले गए। रोहिणी जी कुछ उपानंद के घर से कुछ व्यस्त होंगी, किसी काम में अस्वस्थ होंगी, कुछ होगा, इनको ले गए। अब घर में कोई नहीं रहा। सवेरा हुआ, दूध अपने आप निकाला या शाम को निकाला और निकाल करके अपने चूल्ही पर उन्होंने खुद रखा। सवेरा हुआ, खुद सभी मंथन में जुट गए और सभी मंथन करने लगे। श्रीमद् भागवत में उनका बड़ा ही सौंदर्य वर्णन किया गया है। श्यामल शरीफ कृष्ण जैसा, कोई कोई कहता है गोरी, किंतु यशोदा जी को रूप गोस्वामी ने कृष्ण जैसा, कृष्ण का जैसा रूप, इनका भी रूप वैसा ही श्यामल वर्ण का, परम सुंदरी, प्रौढ़ा अवस्था होने पर भी कमर पतली, तत्फल चौड़ा, बेणी गुथी हुई, सूक्ष्म रेशमी वस्त्र पहने हुई है और दधि मंथन कर रही है। दधि का भांड है, एक खंभा है, खंभा में रस्सी लगा दिया और उसको लपेट दिया मंथानी में और इस तरह से वो घर घर कर दिया। पसीने के बूंदे भाल से मोती की तरफ तप तप करके चपक रही है। सवेरा ब्रह्म मुहूर्त है, गान में मस्त है, नदी का भांड से मृदंग का पिछला भाग आ रहा है और करताल चूड़ियां बज रही हैं, सोने की चूड़ियां बज रही हैं और बड़े मंद और बड़े सुंदर स्वर से, मधुर स्वर से गोविंद राम गर्मा थे, या कोई कृष्ण का बाल क्षेत्र गा रही है, तन्मय हो गई है। कृष्ण पलंग पर सोए हुए, नींद खुली, आंखों में खुमारी, शरीर अभी आलस्य, मैया को आंख बंद करके ही खोजा, पलंग पर मिली नहीं, मैया कहाँ गई, ऊ किया मैया सुनी नहीं। फिर पलंग से पेट के बल में किसी प्रकार से उतरे और लुढ़कते हुए गिरते पड़ते हुए जोर से मैया मैया और जोर से करते हुए मैया की, जब तक कर निकट नहीं पहुंच गए जो सुधा मैया ने सुना नहीं। यशोदा जी को जब कभी नहीं सुनाई पड़ा तो एक हाथ से मनखानी को पकड़ लिया और दूसरा हाथ उनकी बेनी पकड़ ली। जब उनमें बाधा आई दधी मंथन में, देखिए कौन ऐसा किया तो समझ गए, पीछे मुख खोल करके देखा, कृष्ण को आगे पकड़ लाया, दधी मंथन बंद हो गई और गोदी में रख दिया, स्नेह से आंसू के बूंदे टपकने लगी, चुंबन किया, सन से दूध झरने लगा अपने आप और गोदी में रख करके भी खिलाने लगी। द्रवित उनका हृदय हो गया, रोमांच और तुलक भी हो गया, अस्त सात्विक भाव खिलाने लगी। दूध दूर में रखा हुआ दूध उफन रहा था, मानो ये कह रहा है जो सुधा जी के स्तन में विश्व ब्रह्मांड का दूध है और कृष्ण का उदर है
ब्रह्मांड
जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समा सकते हैं। यदि भरने का उपक्रम किया जाए कृष्ण का उदर तो इस ब्रह्मांड में जितने समुद्र हैं उनका पानी या दूध समुद्र का पानी भरने पर भी वो पूरा नहीं, इतना उनका चौड़ा और लंबा उनका उदर जिसमें उनके सुधा जी ने देखा था और दूध भी कम होने वाला नहीं। तो कैसे हो तो तक कृष्ण हमको अपनी सेवा में कभी नहीं लगाए। कृष्ण की सेवा के लिए लोगों की कमी है, है? तो हमको सेवा में लगाएंगे कभी, जिनको कुछ आता नहीं है कैसे लगाएंगे? लगाए हैं जैसे आजकल वोटर का वो बनने के लिए लाइन लगी हुई है दिल्ली और कहां कहां,
ठीक है,
सब ऑफिसों में, जो हम इसके चुनाव में हम खड़े होंगे साधारण व्यक्ति ऐसे लाइन लग जाए कृष्ण की सेवा के लिए और हम अपनी योग्यता देखें कि हमारी कितनी योग्यता है, कोटि कोटि जन्मों में भी हमको कृष्ण की सेवा में लगने का कभी भी पात्रता आएगी योग्यता आएगी नहीं आती। यदि कृष्ण का कोई भक्त तो ऐसा हो और योग्य बना ले तब कभी संभव पर हो सकता, अन्यथा नहीं। हमारे अंदर में कोई भी ऐसी योग्यता, काम क्रोध लोभ मद मोह मार सत्य संसार की गंदी चीजें भरी हुई हैं, कोई भी योग्यता नहीं। साधक जितना ही छोटा रहता है उतना तो समझता है कि अब मैंने मैदान मार लिया, अब भक्ति हो गई, कितना त्याग करके आया हूं। किंतु जब ऊपर उठता है तब देखता है कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है, अभी कहां कृष्ण भक्त है, अपना दोष मालूम पड़ता। जब अपना दोष कुछ दिखने लगे और दूसरों का दोष न दिखे तो समझो कि अब कुछ आता है, अन्यथा जब तक दूसरों का दोष दिखाई देता रहेगा तब तक तो कोई आशा ही नहीं। दुख देख रहा है यशोदा के स्तन में इतना दूध है और कृष्ण की भूख भी इतनी लंबी चौड़ी है कि कभी दूध भी समाप्त नहीं होगा, इनकी भूख भी समाप्त नहीं होगी, चिरकाल के लिए वही पीते रह जाएंगे, इसलिए अब प्राण रखने की कोई जरूरत नहीं, अब आग में जल मरना ही अच्छा। यदि यह शरीर किसी भगवान के काम में भक्तों के काम में न लगे तो शरीर रखने की जरूरत क्या है? यदि भजन ही नहीं हुआ तो क्या जरूरत है? शुद्ध भक्तों का ऐसा ही भाव होता है, प्राण किस लिए है? मर क्यों नहीं गया? गोपियां इतनी सेवा करती हुई भी को वा कदन भारम, को ये शरीर मट्टी है, इसका भार हम क्यों वहन कर रहे हैं बेकार की, यदि कृष्ण की सेवा नहीं। इसी तरह से वो दूध समझ रहा है, यशोदा रूपी भक्त कह रहे हैं नहीं नहीं हम कल पिलाएंगे पीछे पिलाएंगे, पहले तुम्हारी सेवा करा लेंगे। इसलिए जो प्रौढ़ और भक्त रहते हैं परिकर, परिकर लोग उन नौ शिष्यों को आगे बढ़ा देते हैं, नए जो शिष्य हुए हैं या जो अभी जैसे मठ में भी पुराने जो भक्त होते हैं नवीनों को आगे बढ़ाने के लिए उनको सुयोग आगे देते हैं, लो भाई तुम सेवा करो, नहीं तो कभी भी उनको जीवन में समय नहीं आए। अच्छे अच्छे कीर्तन करने वाले हैं, यदि वही कीर्तन करें और नए को सुयोग न दें कभी जीवन में सीख सकते हैं? वैष्णव गुरु जगत से अप्रकट हो जाते हैं, किस लिए? किस लिए? उनके प्रकट में जो कल्याण है अप्रकट में भी वही कल्याण है, वो जो समझेंगे वो समझेंगे, सब नहीं समझेंगे। भक्तों को नए नए भक्तों को सुजोग देने के लिए ऐसा करता, इसलिए यशोदा जी ने सोचा नहीं तुमको प्राण त्याग में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं पीछे पिलाऊंगा तुमको भी पहले सभा का सुजोग दो, तुम मरो मत। इसलिए साथ साथ में दौड़ी, उफनते हुए दूध को उन्होंने आग से हटाया, पानी के छींटे देकर के उसे शांत किया, संपना के छींटे दिए और लौट करके आने आ गए। कृष्ण भी अतृप्त थे, खूब जोर से पकड़ा उनको, किंतु यशोदा जी ने एक झटके में ही उसे बैठा दिया। भक्तों के आगे उनका बल और बल कोई भी काम नहीं करता, उतना त्रिनासुर बकासुर अघासुर हिरण्यकश्यपु रावण इसके लिए तो भयंकर बन जाते हैं, किंतु भक्तों के सामने उनकी तनिक भी नहीं चलती। अपना पूरा बल लगाया और यशोदा जी ने थोड़ा सा डांट कर बैठ और जल्दी से छुड़ा करके बैठ, एक सेकंड नहीं लगा उनको बैठा, किंतु पूतना तृणावर्त और वो कौन सा था सकटा सुर पिंड नहीं छुड़ा सके और यशोदा जी ने छुड़ा, बैठ गए, दांत कर्मण करने लगे, क्रोधित हो गए, होठ स्फुरित होने लगे, अधर कंपन करने लग गए, आंखें कुछ रोष भरी लाल सी हो गई। जब यशोदा जी चली गई तो साथ ही साथ नटखट पड़ती है, अच्छा मैं अच्छी तरह से शिक्षा दूं, इसलिए उन्होंने इधर उधर देखा और हड़िया को आप सब गिरा देंगे, जो मंथन हो रही थी दधी थोड़ा सा पानी भी दिया था, पूरा पानी नहीं दिया था, कुछ गीला हो गया था, गिराने की चेष्टा की, किस वो तस से मस्त गगरी नहीं हुई, नहीं हिला सके। यहाँ पर एक चीज देखने की बात है, भक्ति का कुछ विचार, एक है वो जो दो विचार मैं कहता हूँ भक्ति के सामने से अन्ना विलासिता के विषय में बताता हूँ। अति
व्यक्ति व्यक्ति
हाँ अति व्यक्ति और एक अव्यक्ति, भक्ति कहीं नहीं दिखने पर भी वो भक्ति होती है और अत्यंतिक भक्ति का लक्षण प्रकट होने पर भी भक्ति नहीं है, यह व्यक्ति और अति व्यक्ति का। कृष्ण को वो अच्छा लगना ही भक्ति है, और कृष्ण का अच्छा नहीं लगना भक्ति में, कृष्ण के इंद्रियों को अच्छा लगना ये भक्ति है। और आत्म इंद्रिय दाए बोले काम, अपने सुख के लिए यदि भागवत पर पाठ करते हैं, ठाकुर जी का अर्चन करते हैं, अपने सुख के लिए कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, अपने सुख के लिए कुछ भी करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन करते हैं, तो ऊपर से भक्ति जैसा देखने पर भी भक्ति नहीं भी हो सकता। दूर रहते हैं, भक्ति का कुछ कर नहीं रहा, किंतु भक्ति को भी है। इसीलिए यहां पर दिखलाया, कभी कभी ऐसा होता है भगवान की अपेक्षा उनके प्रिय द्रव्यों के ऊपर में जो भक्ति होती है वो उससे भी बढ़ करके भक्ति है। कृष्ण को अप्रसन्न करके भी, कृष्ण को ऐसे चांटे लगा करके भी, उनका कान मल करके भी, उनको रुला करके भी, यदि कोई उनकी वस्तुओं की रक्षा करता है तो ये भी भक्ति का लक्षण है, बल्कि ये अधिक। जैसे कृष्ण ने अपना कपड़ा गंदा कर दिया और यशोदा जी ने कहा अब फिर गंदा करेगा, उनका कान मल दिया। कोई कहेगा जी कपड़े के लिए और उसको ऐसा कर रही, अभी दूध के लिए, दूध की रक्षा करने के लिए कृष्ण को अस्तित्व अवस्था में ही छोड़ करके चली गई और कृष्ण रोने लग गए, उनकी भूख पूरी नहीं हुई, ये कौन सी भक्ति हुई? साधारण दृष्टि से साधारण मनुष्य ऐसा ही विचार करता है, बताइए नहीं। यशोदा की अंतर भावना क्या है? कृष्ण को धमका करके बैठा गई शासन कर, ये किस लिए? इसलिए कि हमारे दूध से ही इसकी पुष्टि नहीं होगी, किसी का मक्खन बनेगा, दही बनेगा, घोल बनेगा, शक्कर बनेगा, इसी से संदेश बनेगा, लड्डू बनेगा, मोतीचूर बनेगा, लाखों प्रकार की मिठाइयां, लाखों तरह की चीजें ये सब बनेंगे और उसे ये पुष्टिकारक पुष्टि होगी। और ये समझता नहीं है, ये दूध ही यदि चौपट हो गया तो फिर सेवा कैसे होगी? इसलिए कृष्ण को अस्तित्व अवस्था में पहुंच करके उन्होंने, तो कृष्ण को जो प्यारी चीजें हैं उनका जामा है। कोई आदमी है कृष्ण से भी अधिक उनकी बंसी को अधिक प्यार करता है तो कृष्ण को क्या होगा? आनंद होगा। गोपियां कृष्ण की चोरी नहीं करती, बंसी की चोरी करती हैं और कृष्ण को कितने तरह से हैरान करती हैं और कृष्ण उसमें आनंदित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण के प्रिय वस्तुओं का आदर करना कृष्ण से भी अधिक, ये भी भक्ति का लक्षण है। कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं चारुमूर्ति से लड़कर, किंतु चारुमूर्ति का लड़ना ये भक्ति नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति है। कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है और यशोदा में अतिव्याप्ति अव्याप्ति है, इसलिए सब कुछ अंतर्भाव के ऊपर में निर्भर करता है। भक्ति वो आत्मा की वस्तु है, इसलिए यशोदा जी जब दूध को चढ़ाकर उतार करके जब लौटी तो देखा कि कन्हैया तो है नहीं, गया कहां, और दूध का भांड जैसा का तैसा खड़ा है और दूध पानी में मिश्रित होकर के पतला होकर के और सब कुछ वो दही निकल गई है। कृष्ण कुछ गलती कर गए, चोर जितना भी सावधान रहे कभी कुछ न कुछ वो रह जाता है अवशिष्ट चिन्ह, जिससे कि पुलिस उसको पीछे से पकड़ लेती है। यशोदा जी हंसने लगी, कहां गया? गधी में उनके पैरों का सुंदर सुंदर छाप पड़ा हुआ, बस समझ गई ये घर में गया है। पहले तो बिगड़ी फिर पीछे से हंसी और छोटी सी लक्षिया लेकर के घर में जाकर और देखा जे घर में घुस करके पोखर को जैसे खड़ी थी उसी पर चढ़कर हाथ से मक्खन निकालता है, बंदरों को देता है, कभी अपने खाता है और सत्संगी से मित्र से कभी हमारे तरफ नहीं, घर में जिस मैया आई कि नहीं देख रहा है, भीतर की तरफ दरवाजा, बाहर की तरफ में दरवाजा, उधर का दरवाजा खोल रखा है सदर का रास्ते का और इधर का दरवाजा बंद रखा जिधर से मैया आएगी, मैया आएगी तो दरवाजा खोलेगी मैं समझ जाऊंगा और बस भाग जाऊंगा उधर से। चलाकी चतुराई में खूब तेज है मैया भी तो कम नहीं, झांक कर से पहले देखा, स्थिति सारी समझ गई। जब वो निकालने लगा तो झट घर के भीतर घुस करके किवाड़ में छिप गई और इस ताल में रही कि जो ही उधर में फिर दही निकाले फिर मैं जाकर के पीछे से पकड़ लू, जो ही वो फिर हाथ लगाया जसोदा जी थोड़ी सी निकली, इतने में कौवे टप टप कर भगे और बंदर भगे, बंदरों ने देख लिया, बस अनुमान हो गया कि मैया आ गई, पीछे फिर करके देखा और झट कूद करके भगे। उसका भाग करके जाएगा कहाँ से, आज सभी लोग गोश्त में चले गए हैं, बड़े सुना है सुरात पद पर भी तो जाएगा, हमारे पेट से ही निकला है उसी से बुद्धि तुम्हारी निकली है, ठीक है तुम सबो देखे कहा बकता आज तुझे छोड़ी किसी। अब जसोदा जी कुछ फूल काय थी और ये अभी 3.5 वर्ष का हो गया है, बस भगा और पीछे से भगी, थोड़ी देर में जसोदा जी कुछ क्लांत हो गई, एक पत्थर का टुकड़ा या कुछ उठाया, मट्टी का ढेला खड़ा रहा, बस ऐसे किया जसोदा कृष्ण ने ऐसे कर दिया, मैया मार मत, वार्तालाप मारूंगा नहीं तुम्हें, जरूर मारूंगा, नहीं मैया मुझे मत मार, चोरी क्यों की, मैंने चोरी नहीं, चोर तो तुम्हारे वंश में ही होगा हमारे वंश में नहीं, अच्छा ये जीत भी हो गया, अच्छा तो तुमने हड़िया को क्यों तोड़ी, तो मैंने तो तोड़ा नहीं, तो तुम ही दौड़ रही थी जल्दी में हड़बड़ा करके उठी और पैर का कड़ला लग गया बस टूट गया, मैं क्या इसमें मेरा दोष क्या है, और भी उनको कुछ रोष हुआ, कुछ हंस भी रही है, फिर पकड़ने के लिए दौड़ी फिर भगा, अब कुछ क्लांत हो गई, कुछ दूर भी आ गया, केस खुल गए, पुष्प गिरने लगे, मानो पुष्प का रंग, बेटे को पकड़ो हम भी तुम्हारे साथ में हैं अकेले नहीं, इस तरह से रास्ते में फूल गिरते हुए चले जा रहे हैं और कुछ क्लांत हो रहे पसीने के बुन रहे हैं, तो उनको कुछ थोड़ा सा दया आ गई कृष्ण, झट एक कुछ उठाया मारने के लिए, लड़किया छोड़ी ऐसे देखो अभी मार, बस ऐसे किया झट पकड़, ठीक है मारू आप कृष्ण एकदम भयभीत होकर और रोने लगते, रुदन सम्भोर नेत्र भक्ति के साथ में यशोदा जी ने मैया ने उनको बांधने का उपक्रम किया, बंध नहीं रहे, भक्तों की चेष्टा एक अंग और भगवान की कृपा ये दूसरी अंग, साधक लाख चेष्टा करे भगवान को पाने के लिए, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक वो बंधन में नहीं आएगी, उनको कोई दर्शन नहीं कर सकता है, यशोदा जी परिश्रम कर रही हैं जब तक बंधन में नहीं आए, जोग माया ने बांधने नहीं दिया, कमर जैसी की तैसी रस्सी बढ़ती गई, गांव गोकुल की समस्त रस्सियां भी आई उनको बांधने लगी, दो अंगूर कम पड़ता गया, क्यों? अभी भगवान की कृपा नहीं हो रही है, और दूसरी बात इनका भी परिश्रम पूरा नहीं हुआ, अपने परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नामात्मा प्रवचन ही न लब्ध हो, प्रवचन से भगवान नहीं मिलेंगे। हजार प्रवचन करके लाखों लोगों को तुम गदगद कर दो, कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास में तो अधिक से अधिक 250 आदमी हैं, कहीं कहीं पर 10,000 भी लोग बंगाल में मेदिनीपुर इत्यादि में जीत जाते हैं। यहाँ पर कहाँ गुजरात से और कहाँ कहाँ कैसे आते हैं, एक एक लाख लोगों की भीड़ होती है, बड़ी भीड़ हो जाए भगवान मिल जाएंगे। जिनकी एकांतिकता नहीं, केवल बाजा और स्वर, कोई भी एकांतिकता भगवान में नहीं है, बस उसी से मिल जाएंगे प्रवचन करने से, बहुत से सुनने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, बुद्धि से नहीं मिलेंगे, विद्या बल सौंदर्य से नहीं मिलेंगे। जिसको कृपा पात्र के रूप में उन्होंने वर्ण कर लिया कृपा करके, बस वही भगवान को जान सकता है, दूसरे नहीं जान सकते। शरणागत होने पर भी यदि वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया तो शरणागति भवने से भी कुछ नहीं होगा। ग्रहण किया कि नहीं कृपा पात्र के रूप में, ये बात तो यशोदा जी बांसी चली गई, नहीं बंधा 2 बजे, 10 बजे तक बंधा नहीं। जब परिश्रम हुआ थी पेट के कुंड गिरने लगे, कुछ रुआसा हो गई, नारायण के शरणागत हुई गृह देवता के, मुख विवर्ण हो गया, गोपियां हंसने लगी या लज्जित भी हो गई। जब कृष्ण से देखा नहीं गया तो कृपया की तो सौबंध ने कृपा से ही
परिश्रम कृष्ण कृपया।
इसलिए भक्त जब तक ही ऐसी तीव्र उत्कंठा न रहे और भजन का परिश्रम न रहे तब तक कृष्ण की कृपा होगी नहीं, और बिना कृष्ण की कृपा के वो होगा नहीं। इसलिए दोनों का मिलना जरूरी है, अपना परिश्रम और भगवान की कृपा, दोनों का मिलन होना चाहिए। साथ ही साथ में उनकी जोग माया वहां से हट गई, बस एक ही बंधन की रस्सी से वो बंध गए। हमारे दामोदर के रस्सी
सत्यव्रत
नमस्ते
दामने
सुरदीप्ति धामने कहते कि मैं उस रस्सी को नमस्कार करता हूँ जिस रस्सी के द्वारा कृष्ण बनते। वो रस्सी क्या है? प्रेम है, वो प्रेम रूपी रस्सी से बंधे। अपने बंधन अवस्था में रह करके भी उनको मुक्त कर दिया, यमलादि को बंधन कर दिया। अब इस लीला का हम लोग कल वर्णन करके और बाकी कथाएं बनाने के लिए अपने हृदय रूपी कारागार में नित्य ऐसे बांध करके रखूंगा जो कहीं आप निकल न सके। बतला रहे हैं कि मैं सभी भाईजन लीला को नमस्कार करता हूँ, वो लीला हमारी रक्षा करें। लीला कैसे रक्षा करेंगे? भगवान का नाम रक्षा करें, ये समझ में आ जाता है कि भगवान है। तो लीला कैसे रक्षा करेंगे? जो लीला जो देख रहे हैं वो भी भगवत स्वरूप, इसलिए वो लीला हृदय में स्तुति होगी तो कृष्ण भी स्तुति हो जाएंगे, ये भी चीज है, तो वो कृपा करें। उससे ये संसारिक स्थिति दूर हो जाएगी और बोल भी नहीं
अच्छा
बोल बात बोल फिर से कैसे लीला रक्षा करती है साधारण भाव से देख लो। यदि लीला का स्मरण होगा तो माया आ सकेगी हृदय में। निरंतर नाम होता रहेगा तो अपराध का कोई भय है? इसका साधारण दृष्टि में भी यदि लीलाओं का चिंतन निरंतर होता रहे तो अपराध आने का, माया घुसने का कोई प्रश्न नहीं। सब समय कृष्ण की स्मृति रहेगी। लीला कथा का श्रवण उन लोगों के लिए सफल है जो सुन करके, चिंतन करके, स्वप्न में भी उसी का, सोने के समय में उसी का, उठने पर उसी का ध्यान करते, चिंतन करते, नाम करना भी उसी का सार्थक है। जब इस स्थिति आ जाए, नाम करते करते सोए, नाम करते करते उठे, स्वप्न में भी चलते फिरते बैठते, सब समय उसकी स्मृति। लीला की भी ऐसी ही, जब ऐसी धुआं में स्मृति होने लग जाएगी तो समझो जिसे अर्थ ठीक है। तो लीला हमारी रक्षा है। कृष्ण को यशोदा माँ बांध रही है। यशोदा जी सोच रही है, स्वाभाविक मातृ वत्सल स्वभाव के आधार पर जैसा सोचना चाहिए ठीक वैसा ही सोच। वो सोच रही है सचमुच में ये लड़का बिगड़ रहा है और जो उलाहना देने वाली है वो ठीक कह रहे हैं। आज घर में भी मैंने प्रत्यक्ष यह देखा, युवावस्था में होने पर ये अत्यंत अधिक बिगड़ जाए, इसलिए अभी से इसको शांत कर। इसको यदि दंड न देंगे ना, बच्चों को कैसे बसीभूत में किया जाए? या तो दंड देकर, काम दाम दंड भे, मधुर वचनों से प्यार से उसे समझाया जाए। इसका भी नहीं मांगता है तो कुछ ले दे करके उसे शांत करो। ये हो गया दाम, जो वस्तु चाह रहा है उसको दे दिया जाए। दंड दंड दे करके उसे दुरुस्त कर, और इतने पर भी नहीं मान रहा है तो भेद कैसे होगा? अभी पिताजी को दिखला दूंगी, तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी, भाइयों में सखाओं में भेद लगा दिया, इसके साथ में कोई मत खेलना,
कोई बात ना कर, किसी से बात ना कर,
इत्यादि का। तो सब करके हार चुकी है, दंड बाकी केवल है। अच्छा तो इसको दंड देना, इसलिए दंड देने जा रही है। दंड में लठिया उठाया मारने के लिए तो रोने लगे, वो रुदन तन बहुत में थका भावा, भैया मुझे मार मत। दोनों में अदान पर कृष्ण जब अत्यंत अभी को रोने लग गए तो उन्होंने लठिया छोड़ दिया और उनको बांधने का उपकार कर रहे हैं। हाथ बांध दिए जाए या इसको कहीं एक जगह बांध दिया जाए, क्योंकि अब बिगड़ा लड़का हो चुका है, कहीं जाकर के जमुना में फंस गया, कहीं जंगल में चला गया, कहीं कुछ हो गया, बड़ा सारी गड़बड़ हो गया। इसलिए सर की रस्सी निकाली, जूड़ा बांधने का रेशम की डोरी, और उसको कमर में बांधेंगी और फिर उसको कोई ऐसे भारी चीज से बांधेंगी जिसे वो जान सके। तो वही उदुखल है मन में संकल्प कर लिया हो तो उसी के साथ ही उसको बांध जैसे जाना हो। तो कृष्ण सोच रहे हैं यदि मैया बांध दिया वो स्वाभाविक नग लीला के अनुरूप सोच रहे हैं कहीं, यदि मैया ने बांध दिया तो बच्चों के साथ में आज मैं खेल नहीं सकता, खिलवाड़ सब बंद हो जाएगा, सब सखा लोग आ रहे हैं और मुझको इस दयनीय स्थिति में जब देखेंगे तो सभी ताली बजा करके हमारी हंसी उड़ाएंगे, कैसा मजा चखा। यदि उन सखाओं का देखना ही इनके लिए बड़ी भारी लज्जा का विषय, उसके आने के पहले ही मैया मुझे छोड़ देती और न बांधती, बछड़े दूध नहीं पी रहे मुझे मेरे लिए, मैं खेलने के लिए अपने बच्चों के साथ में सखाओं के साथ में जाऊंगा, घरों की मैयाएं सब खड़ी होंगी अपने घरों घरों में, हमारे घर में मक्खन चोरी के लिए आएगा, कितनी तरफ की आशाएं बांध रही हैं, ये कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैया मुझे न मांग सकता है। जोग माया अघटन घटन पटियसी शक्ति, भगवान को इस बात का पता नहीं चलने दिया, भक्त और भगवान दोनों के पास में ये शक्ति है, भगवान के परिकरों को, भगवान के परिकर लोग किसी भी स्थिति में सहज ही अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते, नहीं तो लीला नहीं संभव हो, भगवान भी नहीं चाहते किंतु उनकी ऐश्वर्य शक्ति उनके साथ में